हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखने जा रहे हैं। तो आप सब मेरे पीछे दोहराइए, दोनों हाथ जोड़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। तो शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जब कई सारे लोग एकत्रित होकर भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण और लीला इनकी चर्चाएं करते हैं या सुनते हैं, तो उसी क्षण कृष्ण उन सारे लोगों पर विशेष अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं। इसलिए आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है या दिन है कि हम अभी कृष्ण के बारे में सुनेंगे या कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता आप जानते होंगे, भगवद गीता यथारूप। तो भगवद गीता ये जो ग्रंथ है जिसको भगवत का मतलब है भगवान ने, और गीता का मतलब क्या है? गीत। भगवान ने क्या किया अर्जुन के लिए? सुबह सुबह अर्जुन ऑफिस के लिए निकले थे। कहाँ निकले थे? अर्जुन का कार्य क्या है? युद्ध करना। तो अर्जुन सुबह सुबह युद्ध करने के लिए निकले थे, और हम भी निकलते हैं ऑफिस के लिए, लेकिन हम इतने अपने आप को बिजी करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि भगवद गीता कृष्ण ने जो उपदेश दिया, ये किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया कि कोई ब्रह्मचारी है या कोई सन्यासी है जो बैठा है जिसके पास कोई कार्यकलाप नहीं है। कृष्ण ने उसको पकड़ा और भगवद गीता का ज्ञान दिया। तो जब हम भगवद गीता की पढ़ने की, चर्चा करने की, सुनने की बात करते हैं, तो लोग अक्सर इस बात का उल्लेख करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और हम इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि भगवद गीता या ऐसा ग्रंथ है कि जो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करता है। तो अर्जुन जब अपने ऑफिस निकले थे और अपनी कार में बैठे ही थे, तो बहुत कष्ट में थे अर्जुन। उनको क्या कष्ट था? कि मुझे अपने जो बांधव है उनके साथ युद्ध करना पड़ रहा है। तो लेकिन जब उनके पास समस्या थी तो अर्जुन क्या करता है, जिज्ञासा करता है। किसके पास जिज्ञासा करता है? कृष्ण के पास। कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है और जिज्ञासा करता है। तो हमें सीख सकते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, ये केवल इसी के लिए नहीं मिला कि सुबह से शाम तक हम केवल गधे के जैसे कार्यकलापों में अपने आप को लगाए, नहीं। और क्यों लोगों को कहा जाता है कि आप समय निकालिए, बैठिए, पढ़िए, चर्चा करिए, कृष्ण की सेवा करिए, तो लोग कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हम ये सब करेंगे तो हमें खाने को क्या मिलेगा, कौन कमाएगा, हाँ ये उत्तर होता है। लेकिन इससे हम देखते हैं भगवद गीता से कि यदि हम कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो बहुत ही सरलता से हम क्या करते हैं, अपने सारे कार्यों को करते हैं बिना किसी रुकावट के और बिना किसी डिफिकल्टी के। यदि हम कृष्ण भक्ति का या कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करते और केवल कार्य करते जाते हैं तो हमें कभी सफलता नहीं मिलती। हाँ, हमें कई सारा समय अपना उन कार्यों में लगाना पड़ता है। तो इसी उद्देश्य से अर्जुन कृष्ण से जिज्ञासा करता है अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। तो इस जिज्ञासा से हम समझ सकते हैं कि हमारा ये जो शरीर हमें मिला है ये केवल जिज्ञासा करने के लिए मिला है। इसलिए वेदांत सूत्र में इस बात का वर्णन आता है। बच्चों को थोड़ा सा आप शांत कर सकते हैं, बच्चों को नीचे भेज सकते हैं क्लास में। एक बार मेरे पीछे दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि वेदांत सूत्र में इस बात का वर्णन किया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अथ का मतलब है कि अभी आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है और अथ इससे पहले आपके पास कई सारे शरीर थे। कौन कौन से शरीर थे? आपके पास कुत्ते का शरीर था, आपके पास बिल्ली का शरीर था, आपके पास सुअर का शरीर था, आप कॉकरोच थे, आप एक चींटी थे। तो ये सारे शरीर आपके पास थे, लेकिन उस शरीर में आप भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं कर सकते। तो इसलिए वेदांत सूत्र कहते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अभी सही समय आ गया है। क्या सही समय है? कि आपको अभी ये मनुष्य का शरीर मिला है और ये शरीर में आप क्या कर सकते हो, ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकते हो, आप ब्रह्म के बारे में पूछ सकते हो, आप प्रश्न पूछ सकते हो। तो कौन से प्रश्न पूछ सकते हो? जैसे अर्जुन भगवान को भगवद गीता में प्रश्न पूछ रहा है, कई प्रकार के प्रश्न है। भगवद गीता क्या है? कोई स्टोरी बुक नहीं है या काल्पनिक कथाएं नहीं है। भगवद गीता एक प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हैं हमारी दैनंदिन जीवन में, ऐसा एक ग्रंथ है। और जो हमारे जीवन में हमें प्रश्न आते हैं, कई समस्याएं आती हैं और उसका उत्तर हमें सही ढंग से नहीं प्राप्त होता, तो भगवद गीता में इसी प्रकार के प्रश्न हैं जो अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं और कृष्ण क्या करते हैं, उन सबका उत्तर देते हैं। इसलिए यदि हम भगवद गीता को स्वीकार करते हैं और भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो बहुत ही सरलता से हम सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन लोग कहते कि अभी टाइम नहीं है, अभी तो बहुत समय है, इतना जल्दी मैं क्यों भक्ति में लगूं, अभी तो ये भक्ति करना तो ये बूढ़े लोगों का काम है। हाँ, या तो लोग कहते हैं कि इतना जल्दी क्या करना है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो भगवान की भक्ति करूंगा, या फिर मेरी और इच्छाएं पूर्ति होनी है। इतनी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। तो लेकिन ये दोनों जो बातें हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। जैसे कि शास्त्र कहते हैं, हम यदि सोचें हाँ कि हम बूढ़े हो जाएंगे और तब कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो ये संभव नहीं है। हाँ, बुढ़ापे का मतलब क्या है, आप में से कोई बता सकता है? बूढ़ा व्यक्ति किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं बूढ़ा? हाँ, आप में से कोई? यस माता जी। हाँ, जीवन से थक जाता है वो बूढ़ा है। किसी आजकल के नवयुवक को आप मिले हैं जिसके पास जॉब नहीं है, वो भी जीवन से थक गया है, तंग आ गया है, तो वो बूढ़ा है? नहीं है। तो बूढ़े बूढ़ा बूढ़े व्यक्ति का मतलब क्या है? हाँ, जिसकी उम्र ज्यादा हो जाती है। और माता जी पीछे। हाँ, सही आंसर है। क्या है उत्तर? बूढ़ा बूढ़ापे बूढ़े व्यक्ति का डेफिनेशन क्या है, कि जो व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है। बुढ़ापे का ये डेफिनेशन नहीं है कि हमारे दांत गल निकल जाते हैं तो हम बूढ़े हैं। आजकल किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जो सारे दांत गिर जाते हैं, तो हम उसे बूढ़ा कहेंगे? या तो कोई कह सकता है वो व्यक्ति बूढ़ा है जिसके बाल सफेद हो गए हैं। आजकल बच्चे जन्म लेते ही उनके बाल सफेद होते हैं, तो वो बूढ़ा है? नहीं है। तो बूढ़े का मतलब क्या है, कि जो व्यक्ति किस चीज के नजदीक है, मृत्यु के नजदीक है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु के नजदीक नहीं है? या है कोई व्यक्ति? कौन है पीछे? यस। तो हम सारे लोग क्या है, मृत्यु के नजदीक हैं, चाहे हम छोटे बालक है, युवक है या बूढ़े हैं। तो इसलिए हाँ, हम सारे वास्तव में क्या है, बूढ़े हैं। हम सारे बूढ़े हैं और हम बहुत उत्साह के साथ जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे पार्टी मनाते हैं, लेकिन वास्तव में ये भूल जाते हैं कि मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ। हाँ, वास्तव में मृत्यु की ओर जा रहा हूँ। बल्कि हमें दुखी होना चाहिए उस दिन जिस दिन हमारा बर्थडे है, कि ओ कृष्णा कितना हम मृत्यु के नजदीक जा रहा हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं। ये इल्यूजन है, ये क्या है, माया है। तो माया शब्द का अर्थ है कि जो है नहीं उसको क्या मानना है, मानना। जैसे रात को आप खड़े हो और रास्ते में एक लंबी एक रस्सी पड़ी हुई है और आपको दूर से लगता है ये क्या है, सांप है, तो वो सांप नहीं है, वो क्या है, रस्सी है। कि जो चीज नहीं है उसको क्या मानना है, मानना, वो माया है। तो जो माया की शुरुआत होती है इससे, कि हम अपने आप को क्या मान लेते हैं, शरीर मान लेते हैं, ये माया की शुरुआत है, फर्स्ट स्टेप है, ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट है माया का, कि हम ये शरीर नहीं है लेकिन हम अपने आप को ये बॉडी मानते हैं। हम सोचते हैं मैं सुंदर हूं या मैं बूढ़ा हूं, मैं युवक हूं, मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं पुरुष हूँ, प्रभुपाद कहते थे मैं अमेरिकन हूँ। हाँ, इस प्रकार से अपने आप की जो पहचान है वो इस शरीर से करना, उसको क्या कहा गया है, हाँ वो माया। तो इसी प्रकार शास्त्र इसी बात पर बल देते हैं कि हम यदि सोचें कि नहीं अभी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो भगवान की सेवा में लगूंगा, भक्ति करूंगा नहीं, ये तो वैसी ही बात है। क्योंकि बुढ़ापे में आपकी कोई चीज कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकती। हाँ, कीर्तन करते भक्त लोग आपको कहाँ जाए, नृत्य करिए, तो बुढ़ापे में आप नाच सकते कृष्ण के लिए नहीं। आपको कहाँ जाए कृष्ण का दर्शन करिए, तो हमारे आंखों से हमें दिखाई नहीं देता। हमें कहा जाता है कि कीर्तन करिए ऊंची आवाज में, तो बोलने के लिए शक्ति नहीं है, तो क्या कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो ये बुढ़ापे में भगवान की सेवा करना या कृष्ण की सेवा में लगना, ऐसी योजना बनाना उसी प्रकार है जैसे एक व्यक्ति था जो अपने प्रेमिका को मिलने के लिए चला था। अब उसके पास कई सारे फूल थे। आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है या क्या है? अच्छा ठीक है, तो ज्यादा समय ना ले, आप एक कोने में जा सकते हैं तुरंत। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे, एक व्यक्ति अपने प्रेमिका को मिलने के लिए चले तो उनके पास फूल थे। तो वो जा रहे थे नाव से और अचानक क्या हुए, वो सारे जो फूल हैं, फूल क्या होते हैं, गिर जाते हैं उसके हाथ से। तो वो कहता है श्री कृष्ण अर्पणस्तु, क्या कहता है? हाँ, तो वास्तव में उसकी इच्छा कृष्ण के लिए नहीं थी, उसकी इच्छा किसी और को फूल देने की थी। हाँ, लेकिन वो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण अर्पणस्तु, कि चलो नहीं उसको नहीं तो कृष्ण को अर्पण कर देता हूँ। तो वैसे ही हमारा बुढ़ापा है, हाँ, कि अभी बिल्कुल मृत्यु के कगार में खड़े हैं, अभी शरीर कुछ नहीं कर सकता समाज के लिए, परिवार के लिए, तो मैं अभी क्या करूँ, हाँ कोई स्थान नहीं है तो कृष्ण की सेवा में लगता हूँ। तो इस प्रकार से व्यक्ति यदि सोचे कि मैं अभी बहुत लंबा समय है, बूढ़ा हो जाऊंगा तब भगवान की भक्ति करूंगा, तो वो गलत है। और कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, अभी तो मेरी कई योजनाएं हैं, कई प्लान्स हैं, इनकी पूर्ति हो जाएगी तो मैं भगवान की भक्ति में लग जाऊंगा। लेकिन ये मनुष्य शरीर ऐसा है कि आप कितनी भी इच्छाओं की पूर्ति करो, एक इच्छा की आप पूर्ति करते हैं तो हजारों इच्छाएं नई जागृत हो जाती हैं, फिर हम प्रयास करते हैं उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो इसी प्रकार से कभी भी हमारे जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती, और हर समय जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। हाँ, जिस प्रकार एक बहुत बड़े एक बिजनेसमैन था, उस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर अपना बिजनेस किया और उसके बच्चे भी बड़े हो गए। तो उस बच्चों ने कहा कि हमारे पिताजी दिन रात दुकान में लगे रहते हैं, अभी तो ये बूढ़े हो गए हैं, अभी तो इनको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जो पिताजी हैं वो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, दुकान से बाहर। तो बच्चे बड़े परेशान थे कि अभी इनको जरा तीर्थ यात्रा करने दीजिए। तो एक साधु आते हैं तो कहते कि महाराज आप हमारे पिताजी को ले जाइए तीर्थ यात्रा के लिए, और ताकि ये भगवान की भक्ति कर सके। तो वो ले जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, तो लेकिन साधु जहां भी ले जाते हैं उनके जो पिता हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, ना वो भगवान का भजन शुरू करते हैं, ना किसी प्रकार की चीज करने के लिए तैयार होते हैं। तो साधु परेशान हो जाते हैं और जो साधु है वो परेशान होकर वापस उनको घर छोड़ने के लिए आते हैं। तो लेकिन वो जो बेटे हैं वो कहते हैं कि पिताश्री आप जाइए, ये अंतिम चांस है। तो साधु को कहते हैं कि आप आखिरी बार इनको ले जाओ, हाँ अंतिम आप प्रयास करो। तो फिर साधु किसी प्रकार से उनको ले जाते हैं अपने साथ, और ले जाने के बाद जब वो कई तीर्थ स्थानों में से पहुंचते पहुंचते वाराणसी जाते हैं, वाराणसी जाते हैं तो वहां क्या होता है, वाराणसी में जब साधु और जो वो व्यक्ति है वृद्ध व्यक्ति वो एक जगह ऐसे घूमते हैं तो अचानक स्मशान भूमि में जाते हैं जहां क्या हो रहा था, एक मृत देह को जलाया जा रहा था। तो जैसे ही उस मृत शरीर को जलाया जा रहा था तो साधु और ये व्यक्ति वहां खड़े थे, तो वो व्यक्ति वो जो शव को जलाया जा रहा है वो देखकर ये व्यक्ति रोने लगता है, बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तो साधु कहता है कि हाँ मेरा आज जो इतना दिनों का जो प्रयास है ट्रैवलिंग करने का वो पूरा हुआ है, क्योंकि अभी क्या हुआ इनके अंदर वैराग्य आ गया है, अभी ये जरूर कृष्ण की सेवा में लगने का विचार कर रहे हैं। तो साधु जी ने पूछा कि मिस्टर गुप्ता जी आपने से तो कोई नहीं है ना गुप्ता जी, तो क्षमा करिए। तो मिस्टर गुप्ता जी बताइए क्या कारण है, आप रो क्यों रहे हैं? तो मिस्टर गुप्ता जी क्या कहते हैं कि ओ मुझे पता होता, मैं पूरे जीवन भर कपड़े का बिजनेस कर रहा था, मुझे यदि ये पता होता कि लकड़ी का बिजनेस ज्यादा अच्छा है तो मैं क्या करता, लकड़ी का बिजनेस करता। तो इसी प्रकार से क्या सीखते हैं हम इन कार्यों में इतने अधिक लिप्त होते हैं कि हम यदि सोचे कि नहीं अभी बुढ़ापा आने दो, अभी तो मैं यंग हूं, अभी मुझे आवश्यकता नहीं है भगवान की भक्ति करने की, हाँ भगवान का नाम जाप करने की, ये सब चीजों की मुझे आवश्यकता नहीं है, हाँ जब आराम से बूढ़ा हो जाऊंगा तो भक्तों भगवान की भक्ति में लगूंगा। लेकिन ये क्या है, असंभव है, हाँ क्योंकि वो शरीर हाँ इतना ठीक नहीं है हाँ कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जिस समय आपको इस बात का पता चलता है कि ये ह्यूमन बॉडी केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए मिला है, तो तुरंत हमें भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, और भगवान की भक्ति से ही हमें वास्तविक आनंद मिल सकता है। जिस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि कोई मछली है वो जल से बाहर है, और मछली को आप कितना भी प्रयास करो, अच्छा सा अच्छा भोजन उसे खिलाओ, अच्छी से अच्छी चीजें पहनने के लिए उसे दे दो, अच्छे से अच्छे मोबाइल उस मछली को दे दो, क्या मछली सुखी हो सकती है? मछली कहेगी क्षमा करिए, मुझे कहां स्थान दीजिए, जल में फिर से वापस भेजिए। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हमारा कितना भी प्रयास हम करें सुख की प्राप्ति के लिए, तो हर समय वो असफल रहता है। और हम यदि सोचें कि नहीं मुझे अभी ये इच्छा पूर्ति करनी है, ये इच्छा पूर्ति करनी है, लेकिन मृत्यु तक कभी भी आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये भौतिक इच्छाएं हैं, ये वैसी हैं कि जैसे कोई आग जल रही है और उसमें आप क्या कर रहे हो, घी डाल रहे हो, तो और ये वैसे ही बढ़ती रहेगी। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनावेह जातम तुंडम। तो शंकराचार्य कहते हैं कि अंगम गलितम फलितम मुंडम, कि अंगम गलितम कि व्यक्ति का जो शरीर है गल जाता है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो शरीर क्या होता है, गलने लगता है। हाँ पहले इतना सौंदर्य होता है युवा अवस्था में, लेकिन बुढ़ापे में हमारा सारा सौंदर्य खत्म हो जाता है। तो कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में शरीर गलने लगता है। हाँ फलितम मुंडम, फलितम मुंडम का मतलब है कि जब हम जवान होते हैं तो हमारे सर में इतने बाल होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस होते हैं, गिन नहीं सकते। लेकिन हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो सारे बालों का हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। फिर कहते दशना विहीनम जातम तुंडम, पहले युवावस्था में हमारे मुंह में हाँ सारी टीम होती है दांतों की, हाँ लेकिन धीरे धीरे टीम क्या होती है वृद्धावस्था तक खत्म होने लगती है। वृद्धो याति ग्रहित्वा दंडम। तो शास्त्र कहते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम दंड का सहारा लेते हैं, दंडे का, हाँ दो दो पांव से काम नहीं चलता, हमें क्या करना होता है, तीसरे पांव की सहायता लेनी पड़ती है। तथापि न मुंचति आशम पिंडम, आशा, हाँ फिर भी इतना होने के बावजूद भी व्यक्ति की आशा कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आप देखेंगे जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें कोई बोलता है तो हम चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सोचता है इतना साल मैंने गवाया, 50-60 साल, फिर भी मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है, इसलिए वो क्या होता है, हाँ गुस्सा होने लगता है, हाँ वृद्ध व्यक्ति। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये सारी चीजें हैं, हाँ इन सारी चीजों से हम समझ सकते हैं कि ये जो शरीर है ये योग्य नहीं है कि जब हम सोचे कि मैं आगे चलकर भगवान की सेवा करूं। नहीं, जिस समय हमें पता चलता है उसी समय हमें कृष्ण की भक्ति में लगने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में भगवान की भक्ति के अलावा इस भौतिक जगत के दुखों से मुक्त होने के लिए कोई और ये नहीं है, समाधान नहीं है। हाँ, तो भगवान शास्त्रों में इसी बात का वर्णन करते हैं कि सारी समस्याओं से मुक्त होना है तो हमें क्या करना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम।
तो भगवान के भक्ति में लगने का मतलब यह नहीं है कि मुझे जैसा लगता है वैसे मैं भक्ति करूं, नहीं। हाँ, या तो अपने मनमाने ढंग से नहीं, हाँ, जो भगवान ने जो आदेश दिए हैं उन आदेशों को भक्त जानते हैं और उन भक्तों की गाइडेंस में हमें क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति सीखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ दो मंत्र पता चल गए या मैंने कुछ एक किताब पढ़ ली तो मैं भक्ति करने लगा अपने अपने ही मन से। हाँ, इसलिए लोग कहते हैं कि हाँ ये तो मत ततो पद, मैं अपने मन से कर रहा हूँ भगवान प्रसन्न होते, ऐसा नहीं। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसके द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करना सीख सकते हैं। और वो कैसे सीख सकते हैं, भगवत गीता के माध्यम से। और भगवान कहते हैं कि भगवत गीता को केवल कैसे जाना जा सकता है, हम भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान के भक्तों के सहायता से ही आप क्या कर सकते हो, भगवान को जान सकते हो। यदि आपको ये पता करना है कि कोई मिस्टर गुप्ता है मैं उनको कैसे प्रसन्न करूं, तो आपको क्या करना होगा, उनकी पत्नी को पूछना पड़ेगा, मिसेस गुप्ता आप बताइए मिस्टर गुप्ता को क्या अच्छा लगता है खाने में, क्या चीज वो अच्छा लगता है उनको पहनने में, तो वो पूछेंगे और उसी प्रकार से आप करेंगे तो मिस्टर गुप्ता जी क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो वैसे ही कृष्ण है, हाँ वैसे ही भगवान है। हम अपने मनोधर्म से नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, भगवान के भक्तों की सहायता लेनी होगी। हाँ, ये इनफ नहीं है कि मैं कुछ मंत्र सीख लूं थोड़े से या कुछ चीज पढ़ लूं तो भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, नहीं। हमें निश्चित रूप से उन भक्तों का सहारा लेना चाहिए जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और उनसे ही सीखना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन क्या है, भयावह स्थिति में है। जैसे कि आज मुझे काफी छोटी छोटी स्टोरीज याद आ रही हैं। हाँ, एक साधु थे जो जंगल में थे और एक व्यक्ति चला गया जंगल में, बहुत घूम रहा था और घूमते घूमते बहुत घने जंगल में चला गया और उसको बहुत अंदर चला जाने के बाद उसको बाहर आने के लिए रास्ता ही पता नहीं चल रहा था। तो अचानक उसे एक साधु मिलते हैं और उस साधु से वो पूछते हैं कि साधु जी आप बताइए कि मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ। तो साधु कहते हैं कि मैं आपको एक घोड़ा देता हूँ, क्या देता हूँ, तो वो घोड़ा देता हूँ जिस पर आप बैठो तो आपको ये घोड़ा पार कर सकता है, तो लेकिन इसके लिए क्या है, कुछ मंत्र है। तो ये व्यक्ति पूछता है कि क्या मंत्र है, तो साधु कहता है आपको घोड़े को फास्ट चलाना है, आप बैठते ही क्या करो, घोड़े पर बैठने के बाद आपको क्या बोलना है, थैंक गॉड, क्या, हाँ थैंक गॉड, कि हे भगवान आपको धन्यवाद, थैंक गॉड। तो जैसे आप बोलोगे घोड़ा क्या करने लगेगा, दौड़ने लगेगा, और जैसे आपको इसको रुकाना है तो आपको क्या बोलना होगा, हाँ सेव मी, क्या, तो जैसे ये महाशय उस घोड़े पर बैठे और इतने खुश थे कि इतना जितनी कृष्ण की भगवान की कृपा हो गई, तो घोड़े पर बैठने के बाद वो मंत्र बोलना शुरू कर दिए, मंत्र मतलब घोड़े को तेज चलाने के लिए, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड। तो जो घोड़ा है क्या करने लगा, तीव्र गति से जा रहा है और इतना तीव्र गति से कि वो व्यक्ति भूल गया कि मुझे क्या बोलना चाहिए, और घोड़ा तीव्रता से दौड़ रहा है और ये डरा हुआ है, और अचानक वो घोड़ा एक बड़े से पहाड़ के ऊपर जाता है और नीचे गिरने ही वाला था, तो अचानक इसको ट्राई कर रहा है कि क्या मंत्र था घोड़े को रोकने का। तो अचानक इस व्यक्ति को याद आता है कि उस साधु ने कहा था कि क्या बोलो, सेव मी, तो वो व्यक्ति तुरंत कहता है सेव मी, तो घोड़ा क्या होता है, बिल्कुल एक पहाड़ से छलांग ही लगाने वाला था तो उस किनारे पर रुक जाता है। जैसे ये बोलता है सेव मी, तो डरा हुआ था। हाँ, जैसे कि हम कार चलाते हैं और अचानक कोई कार आ जाती है सामने, हाँ, तो हम जोर से जाते ब्रेक लगाते हैं, तो कई बार हम क्या कहते हैं, हम बच जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, थैंक गॉड। तो इसकी हालत वैसी हुई, जैसे इसने बोला सेव मी और वो घोड़ा जंप ही लगाने वाला था तो घोड़ा रुक जाता है और कहते हैं हाँ अभी मैं बच गया। तो भगवान को धन्यवाद देने के लिए वो क्या कहता है, थैंक गॉड। वैसे ही घोड़ा जंप लगाता है। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि कुछ थोड़े से मंत्र कहाँ से हमने सीख लिए, हाँ, कुछ एक दो पढ़ने ग्रंथों के पढ़ लिए हैं, तो इससे हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, भगवान को नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। यदि हम उनके भक्तों उनके आदेशों के अनुसार कृष्ण की सेवा में अपने आप को नहीं लगाते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं या भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो ये बहुत आवश्यक है, हाँ, कि भगवान के भक्तों का हमें भक्तों की सहायता लेकर हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि हम भूल जाएंगे हाँ भगवान को प्रसन्न करना और इस भौतिक जगत में ही हम क्या होंगे, हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम माँ के गर्भ में चले जाएंगे, फिर से माँ के गर्भ के बाहर आएंगे, फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर बुढ़ापा, फिर बीमारी और फिर मृत्यु। तो शास्त्र इस बात को खत्म करने के लिए इसी चीज का वर्णन करते हैं कि हमें अपने आप को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान की सेवा हम बहुत सरल तरीका से हम कर सकते हैं। भगवान की सर्वोत्कृष्ट सेवा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि हम भगवान की सेवा केवल अपने जिह्वा से कर सकते हैं। भगवान की सेवा जिह्वा से कैसे की जाती है, हरे कृष्णा 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 जोर से, और जोर से, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो इतनी सरल सेवा को हम क्या होते हैं इस भौतिक जगत में भूल जाते हैं भगवान की सेवा करना, क्योंकि ये भौतिक जगत का स्वभाव ही है कि आप क्या हो जाते हो, भूल जाते हो। आपने कल क्या ब्रेकफास्ट किया किसी को याद है, नहीं है, हर समय हम भूलते हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा भी हम बहुत सरलता से भूल जाते हैं। और इसलिए हमें, यदि हम बार बार भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, तो कभी भी हम क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा करना नहीं भूल सकते हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा न भूलने के लिए मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर टेक्निक सिखाऊंगा कि हम कैसे हर समय कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। तो इस टेक्निक का नाम है स्पिरिचुअल सर्कल। क्या है इसका नाम, सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं, गोला, आध्यात्मिक गोला। तो इस आध्यात्मिक गोले में आप कैसे रह सकते हैं और अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण टेक्निक में आपको सिखाऊंगा। और आप इस टेक्निक को अपने जीवन में लाते हैं तो आप कभी भी कृष्ण को नहीं भूल सकते, अन्यथा आप क्या हो जाओगे, कृष्ण को भूल जाओगे। क्योंकि भगवान की माया इतनी शक्तिशाली है, कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, कि हे अर्जुन मेरी माया इतनी शक्तिशाली है कि जिसको त्रिगुणमयी है उसको पार नहीं किया जा सकता। तो हम बहुत सरलता से भगवान को भूल सकते हैं, इतनी भगवान की जो माया है वो शक्तिशाली है। लेकिन यदि हम अपने आप को स्पिरिचुअल सर्कल में रखेंगे तो हम कृष्ण को कभी भी नहीं भूल सकते। तो ये जो स्पिरिचुअल सर्कल है ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ, ये जो स्पिरिचुअल सर्कल की चर्चा रामायण में आती है, तो रामायण में इस बात का वर्णन आता है कि जब श्री राम सीता देवी के साथ वनवास के लिए गए थे और उनके साथ लक्ष्मण जी भी थे, तो जब ये वनवास गए तो जंगल में रहते थे एक कुटिया बनाकर। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो रावण है उसको पता चलता है कि जो सीता है इस संसार में सबसे सुंदर है, मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये जो रावण है एक योजना बनाते हैं, मारीचि जो एक राक्षस था उनको कहते हैं कि आप हिरण बनो, गोल्डन हिरण। कहते हैं कि आप सीता की कुटिया के सामने जाइए और सीता को फिर लोभ होगा, वो राम को कहेगी कि मुझे ये सुवर्ण हिरण चाहिए। तो उस प्रकार ये जो मारीचि है हिरण बनता है और उस कुटिया के सामने घूमने लगता है। तो सीता देवी की आंख पड़ती है, सीता देवी देखती है कि ये जो मुझे हिरण चाहिए जो सुवर्ण कलर का है। तो राम को कहते हैं कि मुझे ये हिरण चाहिए, तो राम कहते कि नहीं, हिरण कभी सुवर्ण हो सकता है, ये तो आसुर हो सकता है जरूर, लेकिन सीता अपने हट मनाती है। और वो जाते हैं, राम जी चले जाते हैं और बहुत दूर दूर जाने के बाद वो अचानक राम जी समझ जाते हैं कि ये तो आसुर हैं। तो राम बाण मारते हैं तो तुरंत वो जो मारीचि राक्षस है वो जोर से राम की आवाज में चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है कि हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, मेरी रक्षा करो। तो यहाँ कुटिया में सीता देवी और लक्ष्मण जी थे, तो सीता देवी को बहुत चिंता होती है कि मेरे जो पति राम हैं वो संकट में हैं। तो लक्ष्मण को कहते कि हे लक्ष्मण तुम जाओ उनको बचाओ। तो लक्ष्मण जानते थे कि वो राम को कभी कुछ नहीं हो सकता, ये जरूर आसुर राम की आवाज में बोल रहे हैं। तो सीता देवी को कहते कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि राम को किसी संकट में नहीं है, वो आसुर है जो हिरण था। तो सीता देवी कहते कि हाँ आप नहीं जा रहे हो तो मैं समझ गए कि आप मुझे पति पत्नी के रूप में चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी को बहुत दुख होता है क्योंकि लक्ष्मण जी इतने ये थे, बहुत ही अच्छे भाई थे उनके राम के, कि आज तक उन्होंने सीता जी के फेस को नहीं देखा था। रामायण में वर्णन आता है जब उनको पूछा गया जटायु के वहां या जहां भी जब वो सीता जी के आभूषण मिले तो पूछा कि आभूषण किसके हैं, तो जब देखा लक्ष्मण ने तो लक्ष्मण ने कहा ये मुझे पता नहीं है कुंडल वगैरह। लेकिन जब वो नुपुर देखा तो लक्ष्मण जी कहते हैं नुपुर एव ही जानामि, मैं तो केवल क्या जानता हूँ सीता ठाकुरानी क्या पहनती है, नुपुर धारण करती है। तो ऐसे लक्ष्मण जी थे, जब उनको ये सीता देवी कहती है तो बहुत दुख लगता है। तो लेकिन राम ने सीता देवी की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी थी किस पर, लक्ष्मण जी के ऊपर। तो लक्ष्मण जी को कहा था कि आप इसकी रक्षा करो, तो लक्ष्मण जी अपना बाण लेते हैं धनुष और कई मंत्रों का उच्चारण करके एक रेखा बनाते हैं। उस रेखा का नाम क्या है, लक्ष्मण रेखा। हाँ, इसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा, इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल सर्कल। तो सीता देवी को कहते हैं कि आप इस रेखा से बाहर मत आइए, आप इस रेखा के अंदर ही रहिए। तो लक्ष्मण जी फिर चले जाते हैं और सीता देवी अंदर ही थी। तो फिर रावण एक साधु के वेश में आते हैं सीता का हरण करने के लिए, तो कहते हैं कि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तो फिर सीता देवी आती है कि कोई साधु आया है तो उसको भिक्षा देने के लिए, तो कहते हैं कि मैं तो बहुत भूखा हूँ प्यासा हूँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो भिक्षा दे दो। तो ये रावण जा ही रहे थे उस बॉर्डर के अंदर तो वो जा नहीं पा रहे थे, तुरंत वह आग प्रकट हो जाते थे, तुरंत वो बाहर हो जाते थे। रावण समझ गए कि सीता की रक्षा के लिए सब चीजें की हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, रावण कहते कि आप लेके आओ, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा कि कोई साधु भूखा अपने बिना भिक्षा दिए वो भूखा रह गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो सीता देवी पतिव्रता स्त्री थी और तुरंत उस फ्रूट्स लाती है और उसको बाहर आकर देती है। तो रावण क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं। तो उसी प्रकार हमें ये अनुभव करना चाहिए कि ये जो लक्ष्मण रेखा है वो वास्तव में कृष्ण रेखा है, वो स्पिरिचुअल सर्कल है। उस सर्कल के बाहर सीता देवी चली गई तो रावण ने क्या किया, उसका हरण कर लिया। तो उसी प्रकार यदि हम भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो हमें भी जो भौतिक जगत का जो रावण है वो क्या करता है, हरण कर लेता है और हमें इतना भ्रम में डाल देता है कि हमें ये हमें सोचने लगते हैं कि जगत में सुखी हो जाऊंगा और उस सुख की तलाश में इतना प्रयास करते हैं, दिन रात कार्यरत रहते हैं और सोचते हैं कि अभी कुछ दिनों के बाद ही मुझे क्या होगा, सुख प्राप्त होगा। तो लेकिन हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए हम ये जाने कि मेरे जो ये कृष्ण रेखा है कितनी वीक है, मुझे कोई कृष्ण का स्मरण नहीं होता, कोई कृष्ण की सेवा करने की इच्छा नहीं होती। तो ये जो कृष्ण रेखा है हमें अपनी स्ट्रांग बनानी है, माया से हमें बचना है, तो हमें अपनी लक्ष्मण रेखा या कृष्ण रेखा को क्या करना होगा, स्ट्रांग करना होगा। तो इस रेखा को स्ट्रांग करने के लिए हमें चार चीजें करना आवश्यक है। कितनी चीजें, तो वो चार चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, कोई भी हो। तो यदि वो ये चार चीजें करता है तो निश्चित रूप से उसकी ये कृष्ण रेखा स्ट्रांग होती है और वो कभी भी कृष्ण को नहीं भूलता। वो भूलना भी चाहे कभी भी नहीं भूलता। जैसे वृंदावन वासी थे, मदर यशोदा, नंद महाराज, गोपियां, वो वृंदावन में रहते थे और वो हमेशा यही योजना बनाते थे। कृष्ण उनको छोड़ के मथुरा चले गए और वो सोचते कि नहीं, हम अभी कृष्ण को भूल जाएंगे, ऐसा कहते ही थे और तुरंत कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करते थे और फिर उनको याद आता था कि अरे हम तो कृष्ण के बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण को हम नहीं भूल रहे हैं। तो वो चार चीजें हमें क्या करनी चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इस कलयुग में भगवान ने अपने आप को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सरल विधि दी है और वो विधि क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्यता। कि इस कलयुग में हरे का नाम हरे का नाम हरे का नाम, इसके अलावा और कोई गति नहीं है। तो शास्त्र भगवान के उस नाम को लेने पर बल देते हैं कि ये नाम लेना चाहिए। तो कोई कह सकता है कि भगवान के तो कई सारे नाम हैं, हम तो कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि नहीं, आपको क्या करना होगा, इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना होगा। तो कहेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, जैसे आप सुनते हैं, आप जब बीमार होते हैं और आप केमिस्ट मेडिकल शॉप में जाते हैं तो आप उसे कहोगे कि इतनी सारी दवाइयां हैं, मुझे लगता है कि ये दवाई बहुत अच्छी है, वही दवाई मुझे दे दो। तो ऐसा दवाई लेने से जो हमें अच्छी लगती है कि ये लाल कलर वाली दवाई बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है, मुझे दे दो, तो वो पीने से आप ठीक हो जाओगे, नहीं। जो दवाई आपको डॉक्टर ने लिख के दी है वो आप लोगे तो आप क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो उसी प्रकार शास्त्र है, उसी प्रकार भगवान का नाम है। तो कलि संतरण उपनिषद में आप भगवान कहते हैं कि यदि नातो परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते इति शोषकं नाम्ना कलि कल्मष नाशनम्। कि ये जो 16 अक्षरों का मंत्र है ये कलयुग के सारे कलमशों का नाश कर सकता है। इस मंत्र को हमें उच्चारण करना चाहिए और इसका उच्चारण करेंगे तो हम इस भौतिक जगत के सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए ये पहली शिक्षा है कि हमें अपनी कृष्ण रेखा स्ट्रांग करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा और जोर से
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
क्योंकि भगवान का नाम भगवान से हमारा संबंध स्थापित करता है, तो इसलिए हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रोज माला पर जाप करना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, हमें इस रेखा को स्ट्रांग करना है। दूसरी चीज है भगवान के भक्तों का संग। किसका संग? भक्तों का संग। जैसे मुझे शराबी बनना है तो मैं इस हरे कृष्ण वाले भक्तों के साथ रहूंगा तो कभी भी शराबी नहीं बन सकता। मुझे ढूंढना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा शराब पीता है, तो मुझे उससे मित्रता स्थापित करनी पड़ेगी, अपना समय उसके साथ बिताना होगा। हाँ, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेरे अंदर वो गुण आने लगूंगा। वो किसी गंदे स्थान में गिरा है तो मैं भी उसके साथ वहां मिलूंगा आपको गिरा हुआ। तो यदि हम उसका संग करेंगे, शराबी बनना है, प्रभुपाद कहते थे कि आपको शराबी का संग करना पड़ेगा। तो हमें भगवान का भक्त बनना है तो हमें क्या करना होगा, भगवान के भक्तों का संग। तो भगवान के भक्तों का संग का मतलब क्या है, ये नहीं कि उनके साथ रहे या उनके साथ खाए या उनके साथ घूमे, हाँ, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान के भक्तों से क्या सुनना, किसके बारे में, कृष्ण के बारे में। तो ये है भगवान के भक्तों का संग। तो पहली चीज क्या है, कृष्ण रेखा स्ट्रांग करनी है तो हरे कृष्ण महामंत्र। और दूसरी चीज क्या है, भगवान के कृष्ण के भक्तों का संग। हाँ, जैसे हम सारे एकत्रित आ गए हैं और भगवान के भक्तों का यहाँ संग कर रहे हैं, तो ये संग है कि एकत्रित आकर भगवान के बारे में सुनना, हाँ, भगवान का कीर्तन करना, ये भक्तों का संग है। तो ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज क्या है कि हम रोज नियमित रूप से, जैसे सुबह उठते ही हम टेलीविजन देखना चाहते हैं या न्यूज़पेपर देखना चाहते, आज की ताजी खबर, आज की नहीं होती, कब की होती है, लेकिन कितना बड़ा इल्यूजन है, मूर्खता है। हम क्या कहते हैं, आज की कल की पुरानी खबर होती है, उसको पढ़ते हैं। इतना इल्यूजन है इस भौतिक जगत का, ऐसी कई चीजें आपको मिलेंगी। तो हम जैसे लालायक रहते हैं सुबह उठकर न्यूज सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, यदि हमें कृष्ण रेखा हमारी बीक करनी है, कृष्ण रेखा आपको बीक करनी है तो न्यूज पेपर पढ़ने पड़ेंगे, तो अपने आप बीक हो जाएगी, कृष्ण का स्मरण कभी भी नहीं हो सकता। तो लेकिन आपको कृष्ण रेखा स्ट्रांग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज भगवत गीता को पढ़ना होगा। मैं भी आपके पास 5 मिनट है, जैसे अर्जुन ऑफिस के लिए निकले थे तो कृष्ण ने उनको पकड़ा, उनकी कार रोक दी, कहा कि हे अर्जुन अभी तुम कार से नीचे उतरो और आपने 15 मिनट मुझे 45 मिनट दो। गीता कितने मिनट में बताए, 45 मिनट में अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण ने प्रदान किया। तो हम अपने कृष्ण रेखा स्ट्रांग करना चाहते हैं तो हमें तीसरी चीज करनी होगी कि कृष्ण के बारे में भगवत गीता से हमें पढ़ना होगा, या और कई किताबें हैं उनसे हमें पढ़ना होगा भगवान के बारे में। तो ये करेंगे तो हमारी जो कृष्ण रेखा है वो स्ट्रांग हो सकती है। और चौथी चीज क्या है कि हमें रोज क्या करना होगा, कृष्ण के विग्रहों का दर्शन करना होगा। भगवान के जो विग्रह हैं, भगवान की जो मूर्ति है, पिक्चर्स हैं, जैसे यहाँ हैं, आपको लगता है कृष्ण कितने सुंदर हैं? कृष्ण से सुंदर कोई नहीं है इस संसार में, हाँ तो हमें रोज कृष्ण के पिक्चर्स जो है उनको देखना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले हम जहाँ सोते हैं वहाँ ही कृष्ण का पिक्चर रखें, और सुबह उठते ही सबसे पहले किसको देखें? कृष्ण को देखें। दिन में भी ऑफिस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, घर के काम करने से पहले हर समय कृष्ण के विग्रहों को देखें। और ये हम देखते रहेंगे तो अपने आप हमारे जो ये कृष्ण रेखा है बहुत शक्तिशाली होगी, और हम हमारा जो अनुराग है कृष्ण से होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। यदि हम इन भौतिक जगत से मुक्त होना चाहते हैं और माया के चंगुल से निकलना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? ये जो स्पिरिचुअल सर्कल, ये जो टेक्निक है, इसको सीखना होगा, और इन चार चीजों को हमें फॉलो करना होगा। तो ये चार चीजें क्या है? फर्स्ट चीज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी चीज क्या है? भगवान के भक्तों का संग करने का मतलब क्या है? भगवान के बारे में कितना सरल है, आपको कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं सुनने के लिए? इतना सरल है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए आपको कोई आपसे कोई फीस ले रहा है? नहीं, इतना इजी है। कृष्ण वेट कर रहे हैं, खड़े हैं और बात है फ्री। और तीसरी चीज क्या है? भगवत गीता को पढ़ना। और चौथी चीज क्या है? भगवान का। तो इतना सरल है, कोई कष्ट है इसमें भगवान की भक्ति करने में? कोई कष्ट नहीं है। तो लेकिन बाकी चीजें आप करो, हर समय आपको क्या करना होगा? कष्ट ही कष्ट, समस्या ही समस्या। हाँ, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो ये जो चार चीजें हैं इसको आप सीखिए और अपने जीवन में डालिए। और नियमित रूप से ऐसे कई जो प्रोग्राम्स आपके एरिया में होते हैं उनमें भाग लीजिए। तो ऐसा करने मात्र से आपकी जो कृष्ण रेखा है वो क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। और यदि आपकी कृष्ण रेखा स्ट्रांग हो जाती है तो आप कृष्ण को कभी भी नहीं भूल सकते। और इसी कारण फिर भगवान को गीता में कहते हैं कि आप अंत समय में मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास वापस आओगे, अन्यथा में अंत समय क्या होगा? किसी और चीज का स्मरण होगा। अंत समय में कॉकरोच का स्मरण होगा, घर का स्मरण होगा, बिजनेस का स्मरण होगा, तो फिर हमें उसी घर में जन्म लेना पड़ेगा कॉकरोच के रूप में, आपके पास फिर वो शरीर नहीं होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ऐसे कई जो प्रोग्राम्स हैं आपके यहाँ आपके एरिया में होते हैं तो उन सब में आप भाग लीजिए और सेवा में लगिए। और आज जो अपने आध्यात्मिक सर्कल की जो टेक्निक आपने जो सीखी है उसको अपने डेली कार्यकलाप डेली जीवन में क्या करिए? डालिए। तो आप निश्चित रूप से क्या हो सकते हैं? सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम बहुत लेट हो गए हैं तो मेरे पीछे एक बार दोहराइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? तो मैं फिर से रिमाइंड करूंगा स्पिरिचुअल सर्कल के बारे में। आपको अपनी आध्यात्मिक कृष्ण रेखा स्ट्रांग करनी है तो आपको पहली चीज क्या करनी होगी? क्या है मंत्र? दूसरी चीज क्या है? भक्तों का। तीसरे चीज भगवत गीता को पढ़ना, चौथी चीज भगवान के विग्रहों का दर्शन करना। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अपना कीमती समय दिया और इतने ध्यान से आपने श्रवण किया। तो हम जो कैलाश मंदिर के जो ट्रस्टीज हैं उनका धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इस कृष्ण रामनामृत के संदेश को आप सब लोगों तक पहुंचाने में सहायता की। तो मैं उनके नाम लूंगा, वो प्रभु जी से आगे अपना हाथ स्वीकार कर सकते हैं। तो राम प्रकाश अरोड़ा जी, नरेंद्र चौधरी जी, राकेश कुमार गुप्ता, नीरज सोनी प्रभु, और सुशील गुलाटी। तो कैलाश मंदिर के सारे ट्रस्टी का बहुत बहुत धन्यवाद और उससे अनुरोध भी ताकि इसी तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते रहें और इस कृष्ण धाम नगर के संदेश को लोगों तक पहुंचाते रहें। तो अभी एक यूथ फोरम के डिवोटीज ने ड्रामा भी आपको प्रस्तुत करने के पेश कर रहे हैं, वो थोड़े से कहता है और बहुत सुंदर ड्रामा है, वो बानी और आपके नाम में वो ड्रामा जाएंगे। तो ये कथा है एक नौकर की जो अपने मालिक को ढूंढ रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मालिक कौन है। तो ये ढूंढ रहे हैं कि वो महान मालिक जिनकी ये सेवा कर सकें उसकी ये तलाश में। तो हम देखेंगे कैसे इनकी ये तलाश पूरी होती है।
इतना पतित हूँ कि मुझे इतना नहीं पता कि मेरे स्वामी कौन है। मैं इतना पतित हूँ कि मुझे पता ही नहीं स्वामी कौन है और मुझे सेवा क्या करनी है मुझे इतना भी नहीं पता।
ओम जय जगदीश हरे, बेटे को मसड़ी मिले, बीवी को 100-200 साड़ियाँ, मुझे बड़ा प्रॉफिट मिले। ओम जय जगदीश हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
सब्जी लगा सब्जी
हरे कृष्ण
बालाजी सब्जी लगे हो
अरे कल जो आप लेने थे वो तो बिल्कुल बासी सब्जी निकली है
आज तो रेंटी कॉल आया हूँ
अच्छा कितने रुपए किलो दिया आलू कितने रुपए किलो दिया
20 रुपए किलो दिया
ओहो 20 तो बहुत महंगा है 15 रुपए ला लो
ना आपकी ना मेरी 18 रुपए
नहीं 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 15 लगाने तो दे दो
चलो 15 में मान जाते हैं लो आप ही मुझे स्वामी लग रहे हैं आपके पास तो धन भी है और आपके पास बल भी है बुद्धि भी है मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए
मेरे पास बहुत बुद्धि है मेरे पास बहुत धन है मैं ही शक्तिमान हूँ आप ऐसा करो मेरे यहाँ नौकरी कर दो और जाके बोरी उठाइए ओहो ये क्या कर दिया अरे मूर्ख चलो यहाँ से ये क्या कर दिया हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
अरे लाला कहाँ पर हो कहाँ चल रहे हो अरे तुम्हारा मालिक कहाँ है तुम्हारे मालिक को बुलाओ
जी जी अभी अभी मालिक को बुला रहे हैं कोई सर है
वो
हाँ लाला
हाँ जी सर
तुमने बहुत नोट इकट्ठे किए हैं पिछले साल में
आपको
मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है मुझे सिर्फ अपना अकाउंट दिखाओ
तो
भाई लैक्स का प्रॉफिट और मुझसे कह रहे हो कोई मुनाफा नहीं है तुमको तो बहुत टैक्स बनता है तुम्हें सारा टैक्स पे करना पड़ेगा ये सब मेरे को नहीं ये सब मेरे को पसंद नहीं बोल रहा हूँ मेरे से नहीं नहीं ये तो मैं कुछ नहीं कहता चलो ठीक है तुम कुछ कर रहे हो कुछ कुछ बड़े बनने का भी अरेंजमेंट किया
ये क्या हो रहा है मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ आपने कहा था कि आप सबके स्वामी हैं बट ये तो आपसे ही बड़े स्वामी हैं आपने तो मुझे धोखा दिया है ये स्वामी मुझे प्लीज अपनी शरण में लीजिए
हाँ इतने से 50 लोग मेरे चरण छूते हैं मेरी शरण लेते हैं मैं ही सबका स्वामी हूँ चलो तुम मेरे साथ चलो
अरे
अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो
अरे कहाँ लेके जा रहे हो मेरे नौकर को अरे 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 अरे
तुम ज्यादा दिन तक ये लोग पकड़ो मैं कैसे थोड़ी से मेरे साथ जाने दो साफ किताब दीजिए सारा जितना भी था गुड इवनिंग बॉस आज तो बहुत सारा टैक्स इकट्ठा हुआ है ये लो दीजिए ये तो कम लग रहा है तो क्या बात कर रहे हैं आज तो एक नौकर भी साथ में लेकर के आया हूँ तो ये तो कम है कैसी बात कर रहे हो बोलो और क्या सेवा की जाए आपकी
देखिए क्या आपने तो बताया था कि आप सबके स्वामी हैं लेकिन आपने मुझे धोखा दिया है ये तो आपके भी स्वामी है आप तो इनके दासेदास से कर रहे हैं आपने तो मुझे धोखा दिया है ए स्वामी मुझे अपनी शरण में लीजिए
आपके जैसे बहुत सारे आते हैं सही जगह पर आए शरण लीजिए मेरी पैर दबाइए कंधे दबाइए
आज
मुझे क्या काम
करना है माइक आपके लिए आपसे गवर्नर लेने आए हैं
बुलाओ उसे
गवर्नर
साहब
को पेश कर रहा है
बोलो गवर्नर क्या खबर लाए
खबर तो कुछ नहीं एक नौकर साथ में आया
पैसे दो टैक्स दो सारा और टैक्स भी है और सारा टैक्स दो
ले लीजिए सारा टैक्स
बुलाओ कहाँ है
ले लीजिए
मंत्री इसे अपने सरकारी खजाने में जमा कर दे।
और क्या सेवा है मेरे लिए?
अरे ये अब क्या हो रहा है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। यहाँ पर स्वामी कौन है, सेवक कौन है? पहले तो आपने कहा था कि आप सबके सेवक हैं, और अब यहाँ पर आप राजा की दासी का स्वीकार कर रहे हैं। आप सेवक नहीं है,
यही स्वामी है, आप इनकी सेवा कीजिए।
मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए।
अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे सेवक आपको आपकी सेवा बता देंगे और उनके साथ चले जाएंगे।
जी हाँ। अरे सुनो, ये महाराज कहाँ जा रहे हैं?
ये अपने गुरु जी के पास जा रहे हैं।
अच्छा मैं भी चलता हूँ उनसे मिलने।
हरे कृष्ण बोलिए, मुझे मेरी सेवा बताइए।
अरे अब क्या हो रहा है, अभी तो आपने कहा कि आप सबसे बड़े महाराज हैं पूरे प्रजा के, लेकिन आप तो इन संत महात्मा को प्रणाम कर रहे हैं।
हमारे भी नहीं समझ।
नहीं, यही सबके स्वामी हैं। मुझे तो लगता है आप ही सबके स्वामी, मुझे शरण में लीजिए गुरुदेव।
नहीं सेवक, मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ, तुम गलत सोच रहे हो।
तो फिर कौन है स्वामी, कौन है सबका स्वामी?
अगर तुम असली स्वामी से मिलना चाहते हो तो आओ मेरे साथ।
जी गुरुदेव।
ये है श्री राधा कृष्ण, ये है सबके स्वामी, ये सारे जगत के पालनहार हैं। तुम्हें इनकी शरण लेनी चाहिए, यही तुम्हारी तुम इनके सेवक बन सकते हो। सभी जीवात्माएं अगर इनका नाम जपे तो इनकी सेवा कर सकती हैं। अगर तुम्हें इनका सेवक बनना है तो तुम्हें मेरे पीछे दौड़ाना होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो हम आपको कास्ट से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं पात्रों से। तो नौकर बने थे ये पारस प्रभु, और राजा की भूमिका निभाई थी वीरेंद्र प्रभु ने, और हमारे मंत्री थे यशो प्रभु, सब्जी वाला, टैक्स कलेक्टर और साधु मितेश गवर्नर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाला जी रह गए। तो इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से गीता कॉलोनी में हम करते हैं, हर शनिवार के शनिवार, जो कि होते हैं गीता कॉलोनी के 12 ब्लॉक के 115 नंबर घर पे। तो हर शनिवार को इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, तो आप सब उसमें आमंत्रित हैं और कोई चार्जेस नहीं किए जाते हैं। इसी तरह का कथा कीर्तन सबको का स्थान मिलता है वहाँ पर, तो आप सब आइए उसमें और भाग ले सकते हैं। और तो एक कैलाश मंदिर के हमारे रिकॉर्ड ट्रस्टी जो रह गए थे सम्मान पाने को, मुकेश जी, भाग लेंगे।
आपको कुछ जानकारी देंगे। यहाँ पे वहाँ के कई वॉलंटियर्स हैं और आप